starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
आप सुन रहे हैं SBS Hindi मोबाइल, ऑनलाइन और रेडियो पर।
नमस्कार दोस्तों, आज है गुरुवार 4 दिसंबर 2025 और मैं इति दीवान आपका स्वागत करती हूँ हमारे हिंदी कार्यक्रम में। शाम की चाय हो और कुछ दिलचस्प बातें हो तो बस दिन भर की थकान निकल जाती है। कुछ खबरें, कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे और बढ़िया से गानों की महफिल के साथ अगला एक घंटा आपका होगा मेरे साथ। आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम इस धरती के पूर्वजों और कुलिन राष्ट्र के वुरुंजुरी और वोईवुरुंग लोगों को सम्मान के साथ प्रणाम करते हैं। हम उन सभी बुजुर्गों और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर भूमि के पारंपरिक मालिकों को भी आदरपूर्वक याद करते हैं जिनकी भूमि पर ये कार्यक्रम सुना जा रहा है। जानना चाहेंगे क्या क्या लेकर आएंगे आपके लिए इस शो में। सबसे पहले होंगी खबरें ऑस्ट्रेलिया से, फिर लेकर आएंगे एक अंश ऑस्ट्रेलिया की लीस्ट अफोर्डेबल सिटी पर। कौन सा है ये शहर जहां अफोर्डेबिलिटी यानी आर्थिक क्षमता पिछले साल के रिकॉर्ड स्तर से और 4% गिर गई है, जानेंगे इस अंश में। हाल ही में कैनबरा में सामुदायिक नेताओं, मजदूर संघों और विविधता से जुड़े संगठनों ने मिलकर नस्लवाद यानी रेसिज्म पर चर्चा की। इसी मुद्दे पर लेकर आएंगे अगला अंश। फिर होगी बात ऑस्ट्रेलिया के ड्रेस कोड्स की ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन के अंश में, और आखिरी पहर को बनाएंगे संगीतमय। तो ये सब होगा आज के शो में। आज का सवाल भी सुनेंगे लेकिन इस न्यूज फ्लैश के बाद। बढ़ती महंगाई के चलते फेडरल ऑपोजिशन सरकार पर अपने हमले तेज कर रहा है। विपक्ष के नेता वरिष्ठ मंत्रियों पर गलत प्राथमिकताएं तय करने और पारदर्शिता की कमी दिखाने का आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष की नेता सुजन ली ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऊर्जा नीति, मंत्रियों की विदेश यात्राओं और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को निशाना बनाया। नए शोध से पता चलता है कि 5 में से 2 ऑस्ट्रेलियाई डरते हैं कि वे कभी रिटायर नहीं हो पाएंगे क्योंकि घरों और रोजमर्रा की जिंदगी का खर्च लगातार बढ़ रहा है। एमएफएस इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के अनुसार लगभग 38% सुपर एन्युएशन सदस्यों को ये चिंता है, जो पिछले साल के 28% से 10% बढ़ गई है। 10 प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब समेत 10 दिसंबर से 16 से कम उम्र के ऑस्ट्रेलियाई बच्चों के अकाउंट न हटाने पर $50 मिलियन तक के जुर्माने का सामना करेंगे। ई सेफ्टी कमिश्नर 11 दिसंबर को सभी प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी करेंगे और अकाउंट हटाने से जुड़े डेटा की मांग करेंगे। न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर क्रिस मिंस का कहना है कि वेस्टर्न सिडनी के एक मेडिकल रिसर्च हब को मिली परोपकारी सहायता से जाने बचेंगी। बिलियनेयर और फिलेंथ्रोपिस्ट लैंग वॉकर ने कैम्बल टाउन अस्पताल परिसर में बने लैंग वॉकर मेडिकल रिसर्च बिल्डिंग के निर्माण को वित्त पोषित किया है। फरवरी 2026 में खुलने वाली ये इमारत डायबिटीज, मानसिक स्वास्थ्य, स्वदेशी स्वास्थ्य, बाल चिकित्सा, बच्चों के कल्याण और नशा चिकित्सा पर विश्वविद्यालय शोध का केंद्र होंगी। न्यू साउथ वेल्स के उत्तरी इलाके युंगेला में हुई हिंसक घटनाओं की श्रृंखला के बाद 36 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार बुधवार दोपहर लगभग 1 बजे दो लोगों पर गोली चलाई गई। 41 वर्षीय एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 38 वर्षीय दूसरा व्यक्ति खुद अस्पताल पहुंचा। हांगकांग के घातक हाई राइज बिल्डिंग्स में आग लगने से अब तक 159 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है जिन पर आग लगने से पहले बिल्डिंग में फायर अलार्म को बंद करने का आरोप है। मृतकों की उम्र 1 वर्ष से 97 वर्ष तक बताई जा रही है। और अब खबर खेल की दुनिया से। भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रायपुर में खेले गए दूसरे वनडे में लगातार दूसरा शतक जड़ दिया है। 37 वर्षीय कोहली ने रांची में पहले मुकाबले में 135 रन बनाए। इस मैच में उन्होंने सिर्फ 90 गेंदों में अपना 53वां वनडे शतक पूरा किया, जो एक रिकॉर्ड बताया जा रहा है। तो ये थी खबरें इति दीवान के साथ। तो ये था न्यूज फ्लैश। अब समय है आज के सवाल का। आज टूरिज्म ऑस्ट्रेलिया की एक नई एड लॉन्च की गई, जिसमें क्रोकोडाइल हंटर स्टीव इरविन के बेटे रॉबर्ट इरविन को लोगों को ऑस्ट्रेलिया आमंत्रित करते हुए दिखाया गया। इस एड में ऑस्ट्रेलिया के आइकॉनिक प्लेसेस, वाइल्ड लाइफ, नेचुरल ब्यूटी, कल्चर और अनोखे अनुभवों को दर्शाया गया। अगर आपको मौका मिले टूरिज्म ऑस्ट्रेलिया की एड बनाने का, जहां आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया बुला रहे हो, तो उसमें आप क्या दिखाएंगे ऑस्ट्रेलिया का, या क्या बताएंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में? अगर सीधे शब्दों में बोलूं तो कैसे बेचेंगे ऑस्ट्रेलिया को एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन पूरी दुनिया में? क्या खास है हमारे ऑस्ट्रेलिया के बारे में, हमें बताइए। नंबर है 0439799767। चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं। हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट पर्थ में गंभीर रेंटल स्ट्रेस, कम होती अफोर्डेबिलिटी और तेजी से बढ़ते किराए को उजागर करती है। ब्याज दरें स्थिर होने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया में किराए का दबाव कम नहीं हुआ है। पर्थ की स्थिति सबसे खराब है, जहां अफोर्डेबिलिटी यानी आर्थिक क्षमता पिछले साल के रिकॉर्ड स्तर से 4% और ज्यादा गिर गई है। क्या है ये पूरा मामला, आइए सुनते हैं।
नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हुए हैं भव्या पांडे के साथ। और हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट पर्थ में गंभीर रेंटल स्ट्रेस, कम होती अफोर्डेबिलिटी, घरों को लेकर कड़ी प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन और तेजी से बढ़ते किराए को उजागर करती है। ब्याज दरें स्थिर होने के बावजूद पूरे ऑस्ट्रेलिया में किराए का दबाव अपरिवर्तित बना हुआ है। कई राजधानियों में ऐसे कई परिवार हैं जो अब भी अपनी आय का लगभग एक तिहाई हिस्सा सिर्फ अपने सिर पर छत रखने के लिए दे रहे हैं। और एक बार फिर इस संदर्भ में पर्थ की हालत सबसे खराब है। देश की सबसे कम किफायती राजधानी और भी नीचे गिर गई है। पिछले साल के रिकॉर्ड निम्नतम स्तर के ऊपर अफोर्डेबिलिटी में 4% की और गिरावट दर्ज की गई है। आइए इस रिपोर्ट में हम इन आंकड़ों के पीछे की वास्तविकता पर गौर करते हैं।
लास्ट टाइम वाज $418.36।
जब बचत के लिए कुछ भी न बचे तो बजट बनाना एक जंग बन जाता है। एमिली क्लेमेंटिस के लिए, जो कि एक सिंगल मदर हैं, हर हफ्ता गुजारा करने का हिसाब किताब लगता है। वे अपने सेंटलिंग पेरेंटिंग भुगतान, जो कि लगभग $800 प्रति हफ्ते है, से 2 न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं।
My rent is $850 a week, so already my whole sentencing payment, if I wasn't getting, yeah, has already gone to rent. I don't save anything, so I don't have any savings. The additional money will either come from my parents if like there's something that pops up, like maybe my car, flat tire.
Emily management में अंशकालिक यानी पार्ट टाइम काम करती हैं, लेकिन उनकी कमाई का हर डॉलर उनकी पेंशन कम कर देता है।
We've got some money here that we can use. Some fake money. Gosh, wouldn't it be nice if this was real? Yeah. Yeah.
घर के लिए जमा राशि बचाने के विचार को उन्होंने दूर रखना सीख लिया है। अब जब वे अपने बच्चों के लिए पैसे जुटाने के बारे में सोचती हैं, तो उन्हें सबसे ज्यादा गिल्ट होता है.
Actually, try not to think about it because it makes me feel like a huge failure. It's never been within my radar that I could never provide for my kids.
हालांकि हमेशा से ऐसा नहीं था. एमिली कहती हैं कि वे एक मध्यम स्तरीय धनी परिवार में पली बड़ी हैं. वे पिछले एक दशक से किराए पर रह रही हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में उनका किराया $380 प्रति हफ्ते से बढ़ाकर $850 प्रति हफ्ते हो गया है. साथ ही घरों के लिए कंपटीशन अब और कड़ा है. हाल ही में वे एक होम ओपन में गई थीं और उनके अनुसार हर बार 40 से ज्यादा लोग इस चीज के लिए कतार में खड़े होते हैं.
I went to a home open, and when I went to ask a question to the real estate agent, as I was waiting there, there was a lady already talking to him who had said that she just sold her property and she had about $600,000 in her savings. So she was very happy to pay a whole year of rent in advance. So they're the type of people I'm competing with.
National Shelter के नवीनतम Rental Affordability Index से पता चलता है कि ये दबाव पूरे देश में दिखाई दे रहा है. हालांकि ब्याज दरें अब स्थिर हो गई हैं, लेकिन अफोर्डेबिलिटी में तेजी से कमी नहीं आ रही है. ऐसे में नेशनल शेल्टर के जॉन एंजलर का कहना है कि इस मामले में समाधान सरकार के हर स्तर से आना चाहिए.
These type of things that state governments can do, when you back it in with what the Commonwealth can do, both through leadership and other schemes such as build to rent, a national harmonisation of rental laws, and other ways that the Commonwealth itself can also make a difference. That's what we'd like to see.
हालांकि कई शहरों में, खासकर सिडनी और पर्थ में, ये बदलाव जल्द नहीं आ पाता. सिडनी में भी दबाव उतना ही ज्यादा है. 42 वर्षीय शार्लेट कॉल्सन जोन्स 19 साल की उम्र में स्वीडन से एक छात्रा के तौर पर ऑस्ट्रेलिया आई थीं. दो दशक से भी ज्यादा समय के बाद वे एक अकेली माँ यानी सिंगल मदर है और अभी भी किराए पर रह रही है और उनका संघर्ष बना रहता है.
For me, as a sort of first generation immigrant, that like my parents aren't in the property market, so we don't have that sort of luxury of what the previous booms have been able to offer people in my generation already. So we're already sort of far behind.
Part-time काम करके वे हर 15 दिन में $2,000 कमाती हैं. इसमें से $1,200 सीधा किराए में खर्च हो जाते हैं.
Older women have for a very long time sort of been the most high risk of ending up as homeless or in social housing. So I think, and that's not something we address by housing for older women. I think we address it way earlier in a woman's life in terms of their opportunities to go to work and support themselves.
केवल उनका परिवार ही इस तनाव को महसूस नहीं कर रहा है. बिजनेसेस ऐसे कर्मचारियों को आकर्षित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं जो अपने कार्यस्थल के आसपास रहने का खर्च नहीं उठा सकते. कैफे मालिक टेहन क्वे हर दिन इसके प्रभाव को देखते हैं.
The issue is that there are less houses available than people need to live in them, and some people own many more houses than they can live in. And if those houses were made more available, then potentially things would ease.
आइए जानते हैं प्रॉपर्टी एजेंट अनिल सेठी किन बातों का ध्यान रखने के लिए टेनेंट्स को कह रहे हैं.
मेनली उनको अपनी एक तो एम्प्लॉयमेंट रेफरेंस अच्छी रखनी चाहिए कि ओनली लैंडलॉर्ड लुक फॉर इज अ गुड फाइल्स, लाइक कि जो एप्लीकेंट है उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी हो, एंड देन दे बी एबल टू अफोर्ड दैट रेंट, सो ताकि फ्यूचर में रेंट डिफॉल्ट ना आए. एंड वो दूसरी चीज होती है कि उनको जो अपनी एप्लीकेशन में मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स डाल के कि उनकी एप्लीकेशन को वेफुल बनाने के लिए दे शुड प्रोवाइड द मैक्सिमम, लाइक उनकी बैंक स्टेटमेंट्स हो गई और उनकी करंट और प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री होगी और करंट रेंटल हिस्ट्री होगी, जो वो चीजें वेरीफाई होती हैं उसके बाद लैंडलॉर्ड अप्रूव करते हैं उन फाइल्स को.
वहीं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के आवास मंत्री जॉन कैरी का कहना है कि राज्य की अर्थव्यवस्था और जनसंख्या वृद्धि इस दबाव के पीछे है. साथ ही वे जोर देकर कहते हैं कि सरकार हर संभव प्रयास कर रही है. इस बारे में बात करते हुए वे $5.8 अरब के आवास निवेश और 4 वर्षों में 3,800 सामाजिक आवासों के निर्माण की ओर इशारा करते हैं. फेडरल सरकार का कहना है कि वे मानती है कि अभी इस दिशा में और काम करने की जरूरत है, लेकिन उनका तर्क है कि वे राष्ट्रीय आवास निधि के जरिए और राज्यों के साथ साझेदारी कर ज्यादा किराए के घर बनाकर सप्लाई यानी आपूर्ति बढ़ा रही है। ऐसे में एमिली जैसे परिवारों के लिए बड़ी योजनाएं और दीर्घकालिक वादे तत्काल अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी नहीं बदल सकते। इस किराए के मकान में ये शायद उनका आखिरी क्रिसमस हो। उनकी घर की लीज 3 महीने में खत्म हो रही है और हर लिस्टिंग के लिए सैकड़ों लोग कम्पीट कर रहे हैं। ऐसे में एमिली जानती हैं कि घर से बेदखली यानी एविक्शन की पूरी संभावना बनी हुई है। SBS न्यूज के लिए क्रिस्टान की इस खबर को SBS हिंदी में आपके लिए लेकर आई भव्या पांडे।
तो ये आपने सुना भव्या पांडे को। अब समय है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे एक अहम मुद्दे की, रेसिज्म। आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। ब्रेक के बाद SBS हिंदी पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं इति दीवान को। हाल ही में कैनबरा में सामुदायिक नेताओं, मजदूर संघों और विविधता से जुड़े संगठनों ने मिलकर कार्यस्थलों पर फैले नस्लवाद यानी रेसिज्म पर चर्चा की, जिनका सामना प्रवासी कामगारों को करना पड़ता है। इसी मुद्दे पर SBS हिंदी से स्वाति शर्मा ने बात की फरहाना से, जिन्होंने अपने साथ हुए नस्लवाद पर खुलकर बात करी।
नमस्कार, मैं हूं स्वाति शर्मा SBS हिंदी से। फरहाना पिछले 16 साल से ऑस्ट्रेलिया में रह रही हैं और कार्यरत हैं, पर उनका आरोप है कि नस्लवाद की वजह से उन्हें कार्यस्थल पर बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।
एक टीम में ऐसी थी जहाँ पे मैं अकेली थी, जो यू नो फ्रॉम अ माइग्रेंट बैकग्राउंड थी, तो उस टीम की जो डायरेक्टर है हमेशा वो सारे रिपोर्ट्स फाइनल अप्रूवल करती थी और सब टीम लीडर्स को वो डायरेक्ट फीडबैक देती थी। लेकिन जब मैंने एक रिपोर्ट लिखी तब उन्होंने वो रिपोर्ट उनके सारे जो बाकी के डायरेक्टर्स हैं, सो वेरी वेरी सीनियर पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, उन सबको खुला ईमेल किया और मुझे सीसी इन किया कि ये फरहाना ने रिपोर्ट लिखी है, मैं उसका कंटेंट चेक करती हूँ, लेकिन तुम उसका ग्रामर और पंक्चुएशन प्लीज थोड़ा चेक कर लो। तो ये बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग था मेरे लिए।
फरहाना बताती हैं कि ऑस्ट्रेलिया की वर्कफोर्स में उनका सफर जितना उम्मीदों से भरा था उतना ही चुनौतियों से भरा भी।
अगेन दूसरे जॉब में मैं अकेली माइग्रेंट थी उस पूरे टीम में और मेरी पर्टिकुलर डायरेक्ट रिपोर्टिंग लाइन में कुछ चेंजेस चल रही थी। मेरी मैनेजर ने उस टाइम में मेरा वर्कलोड बिल्कुल ही कम नहीं किया, उल्टा दूसरों का काम मेरे ऊपर डालती गई और मैं भी चुपचाप करती गई कि चलो ठीक है, बॉस ने दिया है तो करते हैं टीम वर्क। लेकिन ये महीनों दर चलता रहा और ऐसा एक वक्त आया कि जब मैं ऑफिस में सो रही थी, रात के 1:30-2 बजे तक काम करती थी, बिकॉज डेडलाइंस कोई पीछे नहीं हट रहा है, सारे काम दिए जा रहे। फिर जब मैंने ये मुद्दा उठाया था कि ये वर्कलोड बहुत ज्यादा हो रहा है और सबके पास ऐसे रिसोर्सेज हैं, मेरे पास अभी रिसोर्सेज नहीं है, तो वर्कलोड थोड़ा इधर रिडिस्ट्रीब्यूट करो या कुछ प्रोजेक्ट्स तुम पॉज करो, ठीक है, मैं ऑफिस में सो रही हूँ, मैं बेटी के पास एकदम टाइम नहीं दे रही हूँ, मैं सिंगल पेरेंट हूँ, इसके वजह से और भी चैलेंजेस मुझे फेस करने पड़ते हैं। मेरी मैनेजर बहुत, जो उनको बहुत सपोर्ट करती थी कि वो फ्लेक्सिबिलिटी यू नो वर्क लाइफ बैलेंस या जो भी हो, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि अरे तुम्हें तो ग्रेटफुल होना चाहिए, तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम इतने बड़े कंपनी में इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हो। एंड माइंड यू इस जॉब में भी मैं इतनी सीनियर पोजिशन में थी, लेकिन मुझसे ऐसे बात करते थे कि जैसे मैं कल ही आई हूँ ऑस्ट्रेलिया और मुझे तो बस उनके पैर धो के पानी पीना चाहिए कि भाई बड़े कंपनी में मुझे जॉब उन्होंने दिया।
फरहाना कहती हैं कि कार्यस्थल पर नस्लवाद हमेशा खुलकर नहीं दिखता, कई बार यह छोटे छोटे माइक्रो एग्रेशन के रूप में सामने आता है, यानी वो टिप्पणियां या व्यवहार जो सीधे सीधे नस्लवादी तो नहीं लगते पर गहरा असर छोड़ते हैं।
मैं अपने स्टाफ किचन में लंच गर्म यू नो हीट करी थी माइक्रोवेव पे और बस उस दिन मैंने आई थिंक पुलाव और कुछ इधर उधर चीजें घर से पैक की थी, कुछ सैलड और ये सब्जी एंड ऑल, तो मैं माइक्रोवेव में डालने वाले थी कि साथ में एक ऐसे खड़ा था और उसने मेरे लंच बॉक्स को देखा और कहा ना कैसे करके ना फेस और बॉडी लैंग्वेज सारा अजीब सा करके, ओह दैट लुक्स लाइक अ मेस, हाउ आर यू गोना ईट दैट। मैं शॉक में चली गई, मैं इतनी गुस्सा भी हो रही थी और इतनी जिल्लत भी महसूस कर रही थी, रोना भी आ रहा था, उस पल में कुछ बोला नहीं गया मुझसे। फिर उसके बाद मैं बहुत सोची, ये मुझे बहुत सारी रात तंग करती रही और बाद में जाके मैंने अपने मैनेजर से बात की कि देखो ये बंदे ने ऐसा काम बोला, ये बंदा दूसरी टीम का कोई सीनियर ऑफिसर है तो उसने ये बोला है, और मेरे मैनेजर ने मुझे इसको कहते, अब मुझे पता है इसका टर्म है रेशियल गैसलाइटिंग, कि एक्चुअली में आपके साथ रेसिज्म हुआ है, आपके साथ माइक्रोएग्रेशन हुआ है, लेकिन आपके आसपास के लोग उसको बहुत नजरअंदाज करके आप ही को समझाते हैं कि अरे नहीं ये तो कोई बड़ी बात नहीं, तुम ही इसको बड़ा कर रही हो, तुम ही उसको सेंसिटिव कर रही हो, तो ताकि आप भी डाउट करने लगो अपने ऊपर कि हाँ ठीक है अच्छा जाने देते हैं उसको, नॉर्मलाइज करते हैं ऐसे। तो मेरे मैनेजर मेरी साथ या मेरी बात समझने की वजह उन्होंने कहा अरे वो तो बस ऐसे क्यूरियस हुआ होगा, वो तो उसको बस ऐसे ही थोड़ी सी दिलचस्पी होगी, उसने वैसे ही बोल दिया, आई डोंट थिंक ये बहुत बड़ी बात है, जाने दो ऐसे होता ही है। तो उसके बाद मैं भी चुप हो जाई, लेकिन वो जिल्लत मेरे साथ इतनी देर रही ना स्वाति जी कि मैं उसके बाद स्टाफ रूम में लंच लेके जाती भी थी कतरा कतरा के, और फटाफट तब गर्म करती थी कि जब सब लंच खत्म कर देना, 2:30 बजे सब लंच खत्म कर दे, तब मैं फटाफट, कोई आसपास नहीं हो तब मैं गर्म करके अकेली खा लूंगी या फटाफट बिल्डिंग के बाहर जाके खाऊंगी, बिकॉज मुझे इतना कॉन्शियस होता था कि स्मेल आएगी, कोई और कोई कॉमेंट कर देगा।
ऐसी ही शिकायतें ऑस्ट्रेलिया में बसे अन्य प्रवासी कामगारों, खासकर भारतीय, पाकिस्तानी, अफ्रीकी मूल के लोगों से भी लगातार सामने आ रही हैं।
मैंने देखा कि प्रोफेशनल कॉर्पोरेट सेटिंग्स में ज्यादातर माइग्रेंट वुमेन ऑफ कलर जो होते हैं वो सबसे ज्यादा लोड उठाते हैं, वो देर दो बंदों का काम करते हैं सबसे कम रिसोर्स के साथ, बिकॉज हमारी वो फितरत में है कि हम अबव एंड बियॉन्ड जाए, तो हम ये नहीं देखते कि भाई ये मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन में है कि नहीं, हमें दिखता है कि बस हाँ ये काम होना चाहिए, बस हम कर देंगे।
कैनबरा में हाल ही में आयोजित एक राउंड टेबल में मजदूर संघों और सामुदायिक संगठनों ने मिलकर कार्यस्थलों पर नस्लवाद की राष्ट्रीय जांच यानी नेशनल इंक्वायरी की मांग रखी। ऑस्ट्रेलिया के रेस डिस्क्रिमिनेशन कमिश्नर गिरिधरन शिवरामन का कहना है कि भले ही लोग नस्लवाद के प्रभावों को समझते हैं, लेकिन देश के पास अब तक इसका पूरा आंकड़ा या प्रभाव का पैमाना नहीं है।
Racism at work is a scourge. It's an issue that affects people at every step of the employment journey. It affects them when they come from overseas and their qualifications aren't recognised. It affects them if their names aren't English sounding, then they can't get job interviews. It affects them when they're not culturally safe at work. But we don't know the full extent of it. We don't know how it's impacting on people's lives. We know that it diminishes people and it damages our economy and our society as a whole. But we need to learn more.
वो कहते हैं कि बहुत से लोग डर या जानकारी के अभाव में शिकायत ही नहीं करते, जिसके कारण सटीक डेटा उपलब्ध नहीं है।
We don't have sufficient data to know where racism is really targeting people, and we know in a general sense where people are vulnerable, but we want to do an inquiry in part so that we can hear people's stories. We can identify which industries we need to move in and work with as a matter of priority.
तो अगर आप कार्यस्थल पर नस्लवाद या फिर माइक्रो एग्रेशन का सामना करते हैं तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, इस बारे में SBS हिंदी ने बात की शार्फा मोहम्मद से, जो द रेशियल जस्टिस सेंटर में वकील हैं। शार्फा बताती हैं,
माय रिकमेंडेशन इज दैट दे सीक लीगल एडवाइस टू अंडरस्टैंड वेदर व्हाट दे आर एक्सपीरियंसिंग इज एक्शनेबल अंडर द लॉ। दे कैन आल्सो रीच आउट टू देयर लोकल कम्युनिटी लीगल सेंटर्स। Before you do anything, before you even speak to people about it, seek legal advice is my first piece of advice.
Okay.
Really important reason for that as well is because, and this is a bit technical, but the Racial Discrimination Act protects against victimization in a way that's extremely limited as compared to all of the other anti-discrimination laws federally.
Hmm.
What that means is if people make an internal complaint or an informal complaint and they actually make no mention of the Racial Discrimination Act or the Human Rights Commission or basically doing anything more formally under the Act, then anything adverse, any detrimental conduct that happens after they report that complaint is not captured by the Racial Discrimination Act at the moment. When they make internal reports and complaints, they should make explicit reference to considering lodging a formal complaint. The first port of call when it comes to the Racial Discrimination Act is that the aggrieved person, being the victim generally, can make a complaint to the Human Rights Commission, Australian Human Rights Commission, and Australian Human Rights Commission will generally organise a conciliation. And a conciliation is similar to a mediation. It's facilitated by the Australian Human Rights Commission, but it's not encumbered by strict procedural or legal rules.
Australian Council of Trade Unions ki adhyaksh Michelle O'Neill kehti hain ki har sector se naslwad ki shikayatein mil rahi hain aur pravasi aur asthayi kamgar isse sabse zyada prabhavit hain, khas karke kshetriya ilakon mein.
So we think an inquiry into racism at work has the potential to do the same thing. Bring out the issues, make sure we understand them, develop strategies to deal with them, and then change workers' lives and workplaces for the better.
Sharfa kehti hain ki karyasthalon par hone wale naslwad ki reporting hona aur uske data ko jama karna behad zaruri hai taki kanoon mein badlav kiye ja sake.
There are laws that are intended to protect against racial discrimination in the workplace. They're not perfect, and we're in the process of getting a paper published on exactly why they really don't work. The court are still learning how to grapple with the more covert forms of racial discrimination, as well as the more systemic forms of it. But we need more case studies, we need more data to demonstrate that, and we also need more litigation test cases to really expand the law, because when you have like a case that comes up, challenges the status quo and courts make a finding, that changes the game for everyone in that space.
Farhana jaise pravasi peshewaron ke liye yeh badlav behad zaruri hai.
Shayad gulami hum ab boot ke tale to gulami nahi hai, lekin kalam ke tale powerpoint ke piche gulami abhi bhi bahut bahut tagdi tarike se chupi hui hai, aur wo hame rok rahi hai as a community to have an equal place in the Australian society, aur Australia ke growth में जो हम कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं उसका फुल पोटेंशियल के आसपास भी हम नहीं गए बिकॉज रेसिज्म के वजह से. उसके ऊपर एज माइग्रेंट कम्युनिटी ये रेसिज्म हमारे फाइनेंशियल वेलबींग, हमारे मेंटल हेल्थ, हमारे आत्मविश्वास, हमारे स्वतंत्र, इन सबको बहुत इम्पैक्ट करती है.
SBS हिंदी के लिए मैं हूँ स्वाति शर्मा.
इस अंश में व्यक्त विचार संबंधित व्यक्तियों के स्वयं के हैं. SBS ना तो इनसे सहमत है और ना ही असहमत. यहाँ दी गई विशेषज्ञ राय को व्यक्तिगत सलाह ना समझें. अपने मामले के लिए कृपया किसी योग्य पेशेवर से परामर्श लें.
तो ये आपने सुना स्वाति शर्मा को. आपकी क्या राय है इस नाजुक मुद्दे पे, रेसिज्म पर? अगर आप चाहें तो हमें लिख भेजिए. इसी के साथ साथ आज हम आपसे पूछ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के टूरिज्म के बारे में. अगर आपको मौका मिले टूरिज्म ऑस्ट्रेलिया की एड बनाने का, जहां आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया बुला रहे हो, तो उसमें आप क्या दिखाएंगे, कैसे बेचेंगे ऑस्ट्रेलिया को एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन? क्या आप बात करेंगे यहाँ के एनिमल्स की या यहाँ के नेचुरल लैंडस्केप की? हमें बताइए. नंबर है 0439-799-767. समय है एक ब्रेक का. ब्रेक के बाद बात ऑस्ट्रेलिया के ड्रेस कोड्स की, किस इवेंट पर क्या पहनना चाहिए, इसी के बारे में बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड के अंश में. आप सुन रहे हैं SBS हिंदी.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. आप सुन रहे हैं इति दीवान को. चलिए अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के ड्रेस कोड्स की. आपने अक्सर किसी पार्टी या इवेंट के इनविटेशन में देखा होगा ड्रेस कोड. ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड के इस अंश में जानिए इसी के बारे में.
आप सुन रहे हैं ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड, SBS ऑडियो पॉडकास्ट जो आपको ऑस्ट्रेलिया में रहने के तरीके में मदद करता है. आपको एक इनविटेशन मिलता है जिसमें लिखा है ड्रेस कोड कॉकटेल कपड़े. ये कोड क्या है और सबसे आवश्यक बात कि आपको क्या पहनना चाहिए. आइए इस ड्रेस कोड को आसान बनाते हैं ताकि आप किसी भी इवेंट में सहज महसूस कर सकें. और SBS पर मैं हूँ अनीता बरार. आप
अक्सर किसी पार्टी के इवेंट में इनविटेशन में ड्रेस कोड देखेंगे। इसमें ब्लैक टाई या स्मार्ट कैजुअल जैसे कुछ लिखा हो सकता है। ड्रेस कोड हमें होस्ट की उम्मीदों पर खरा उतरने और इवेंट के माहौल को बनाने में मदद करते हैं, क्योंकि जिसे हम ओवर ड्रेसिंग मानते हैं उसे कोई और अंडर ड्रेसिंग मान सकता है। फैशनेबल मस्तानी के क्रिएटिव डायरेक्टर कुदरत मक्कड़ कहती हैं कि ये आवश्यक है कि आप थोड़ी रिसर्च करें, खासकर अगर कोई ड्रेस कोड नहीं बताया गया है और होस्ट से ये पूछने में कोई शर्म नहीं है कि क्या पहनना है।
I would definitely double check the dress code. I have learned it the hard way as well. I think coming from an Indian background, especially when we get invited to a wedding, historically we've grown up going to weddings overdressed, but it's because everyone's overdressed. We don't feel overdressed. I think inherently in Australia, everyone's underdressed.
और इसीलिए dress code होते हैं। लेकिन आपके लिए सबसे आम ड्रेस कोड बताने से पहले मेलबर्न के कस्टम टेलर जोशुआ टॉन कहते हैं कि कुछ आम नियम हैं, भले ही हमें ड्रेस कोड के बारे में कुछ भी ना पता हो, जैसे कि किसी फॉर्मल इवेंट के लिए गहरे रंग, कम फॉर्मल के लिए हल्के रंग, महिलाओं के लिए अगर बहुत फॉर्मल है तो कुछ लंबा घुटने से नीचे। आमतौर पर ये अच्छे नियम होते हैं।
Darker colors for more formal events, lighter colors for less formal. For women, something longer if it's more formal, so below knee, usually those are good rules.
Lisa Stockman मेलबर्न में रहने वाली एक पर्सनल स्टाइलिस्ट हैं जो लोगों को फैशन और कपड़ों की सलाह देती हैं और वो ड्रेस कोड भी समझाती हैं। वो कहती हैं कि ऑस्ट्रेलिया में हमें जो सबसे अधिक फॉर्मल ड्रेस देखने को मिलती है वो है ब्लैक टाई। ये एक शानदार ड्रेस कोड है जो शादियों, अवार्ड सेरेमनी और चैरिटी पार्टियों में लोकप्रिय है।
And those are events where men would be expected to wear a black tuxedo, a white shirt, a bow tie and dress shoes. Women would be expected to wear a floor-length gown. And often those gowns are quite heavy fabrics and a lot of women would wear heels to that event.
इसके बाद है फॉर्मल, जिसे ब्लैक टाई ऑप्शनल भी कहा जाता है। ये ब्लैक टाई से कम फॉर्मल है। ये शादियों, फॉर्मल डिनर और कॉर्पोरेट इवेंट्स में आम है। स्टॉकमैन कहती हैं कि पुरुषों के लिए सूट और कॉलर वाली शर्ट सही पहनावा माना जाता है।
And most men in a formal occasion will wear either a bow tie or a tie. Although increasingly in Australia, a lot of men don't wear ties, which can also be confusing. But they may add a pocket square. They definitely would wear dress shoes and a shirt. And for women, it doesn't need to be a floor-length gown, but it usually would be a longer dress. Or sometimes a pantsuit made from a really beautiful fabric.
Cocktail or semi-formal कपड़े, शादियों, cocktail पार्टियों, सगाई पार्टियों, काम के फंक्शन और खास जन्मदिन के लिए आम ड्रेस कोड हैं। Semi-formal को अधिक रिजर्व और क्लासिक माना जाता है, जबकि cocktail ज़्यादा फेस्टिव हो जाता है।
And this dress code really does bridge the gap between formal and casual. So most men here would wear a suit, but it doesn't have to be a dark one. And a lot of men in Australia wouldn't wear a tie in this situation. For women, it's far more open to interpretation here. So a dress could be really any length. Again, you could wear a pantsuit or a jumpsuit.
Semi-formal dress code के उलट cocktail कपड़े अधिक मजेदार और celebrate करने वाले हो सकते हैं और आपके व्यक्तित्व को निखारते हैं। अगर आपके पास कम कपड़े हैं या आपको पक्का नहीं पता, तो जोशुआ टॉन का मानना है कि एक ही ड्रेस इसमें से अधिकतर फॉर्मल ड्रेस कोड के लिए सही रहती है।
So suiting females and males or all genders can wear it and really use different fabric or colors if you're unsure about the actual dress codes. So wear a suit that's a different color or a different fabric that you think will match that code.
Jewelry, tie या पॉकेट स्क्वायर जैसी चीजें आपके आउटफिट को और अधिक फॉर्मल बनाने में मदद कर सकती हैं। फिर कम फॉर्मल है स्मार्ट कैजुअल। ये ड्रेस कोड साफ नहीं हो सकता, क्योंकि ये रोजाना पहनने वाले कपड़ों यानी पार्क में पहनने वाले कपड़ों और अधिकतर फॉर्मल कपड़ों के बीच के अंतर को कम करता है।
टिपिकली मेन इन ऑस्ट्रेलिया ही वुड वेयर चिनोस और रियली स्मार्ट जींस विद नो रिप्स, some sort of button-down shirt, a sports jacket, loafers or driving shoes. And for women, they might wear a coordinated set, so a matching top and pants, for example. They could wear jeans that are a dark denim, a nice dress, skirt, boots. You don't necessarily need to wear heels.
Aur aakhir mein casual kapde, jo dress code mein sabse kam formal hain. Isme maksad ya iski prasthbhumi kya hai, ye avashyak hai. Kya ye office mein ek casual day hai ya barbecue day hai?
And here I would say this is all other events where you can wear denim. Usually when it's a casual event, I would suggest not wearing flip-flops or thongs or ripped clothing, but anything that you feel good in yourself that's nice and presentable.
यदि आप अपने पहनावे के माध्यम से अपनी संस्कृति को व्यक्त करना चाहते हैं, तो क्या होगा? संस्कृति को व्यक्त करने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आपको पारंपरिक पोशाक पहननी चाहिए। मक्कड़ कहती हैं कि इसके बजाय आप छोटे तत्वों पर खेल सकते हैं।
Coming from an Indian background, I have been invited to a lot of those events where it is a black tie, for example, but I really want to still pay a little ode to my culture, and I would do it through details. It could be accessories, you know, I would put a really beautiful necklace which has some sense of heirloom connected to it. I would wear a pattern or a fabric, but in a silhouette which is acceptable. You know, it could be a blazer, it could be very simple dress, but it would have that pattern to it, or you know, a textile would be sort of hand-loomed silk, for example.
जाहिर है अगर आप dress code पूरा नहीं कर पाते हैं तो ये दुनिया का अंत तो नहीं है. आखिर में टोन जोर देते हैं कि होस्ट को अच्छा लगेगा अगर आप बुलाने पर वहाँ जाएं.
So I think making the effort is also important. So really, if you don't understand it, just wear what you can, wear what you think is appropriate, because you'd rather turn up and respect the event or the person. I think that's more important.
ये एक SBS ऑडियो पॉडकास्ट था. ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड के और दूसरे पॉडकास्ट के लिए sbs.com.au/australiaexplained पर जाएं.
तो ये आपने सुना अनीता बरार द्वारा प्रस्तुत एकांश. मैं यहाँ पे आपके मैसेजेस का इंतजार कर रही हूँ. मुझे लग रहा है कि आज मुझे कोई सुन भी रहा है या नहीं, क्योंकि एक भी मैसेज नहीं आया है. ऐसा पहले कभी हुआ नहीं, तो थोड़ा सा सोच रही हूँ कि क्यों ना आप अपना फोन उठाएं और एक छोटा सा मैसेज कीजिए मुझे. कुछ नहीं तो बस हेलो ही लिख दीजिए, तो पता तो चले कि आप मुझे सुन रहे हैं. अच्छा, जिन्होंने अभी अभी ट्यून किया है उनको बता देते हैं आज का सवाल. आज हम आपसे पूछ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के टूरिज्म के बारे में. अगर आपको मौका मिले टूरिज्म ऑस्ट्रेलिया की एड बनाने का, जहां आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया बुला रहे हो, तो उसमें आप क्या दिखाओगे, कैसे बेचोगे ऑस्ट्रेलिया को एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, हमें बताओ 0439-799-767 पर. समय हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के उस पार.
SBS Hindi brings you the latest news and entertainment. Tune into SBS Hindi on SBS Audio website or wherever you get your podcasts.
ब्रेक के बाद आपका स्वागत हर शाम 5 बजे आने वाले इस कार्यक्रम में, जहां हम आपको सुनाते हैं कुछ खबरें और कुछ गीत, और मैं हूं इति दीवान. तो लगता है मेरी सुन ली गई है और कुछ मैसेजेस आ गए हैं. सबसे पहले एक मैसेज आया है, हेलो दिस इज नेहल फ्रॉम क्विकर्स हिल न्यू साउथ वेल्स. तो नेहल जी, छोटा सा प्यारा सा मैसेज लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. हमें जरूर लिखिए आपको आज कौन सा अंश पसंद आया. अच्छा, इसके बाद एक और मैसेज आया है प्रवीण नवीन जी का. लिखते हैं, हाई SBS टीम, गुड इवनिंग टू ऑल. Program is well organized. I am enjoying the songs. तो प्रवीण जी, बहुत जल्दी और भी कुछ प्यारे गीत लेकर आ रही हूँ. अच्छा, इसके बाद कमल जी का मैसेज आया है. वो लिखते हैं, ब्लू स्काई इन डे एंड क्लियर स्टार्स इन नाइट. अब जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है उनको तो शायद समझ नहीं आएगा कि इन्होंने क्या लिखा है, तो चलिए सवाल दोबारा पूछ लेते हैं. आज टूरिज्म ऑस्ट्रेलिया की एक नई एड लॉन्च की गई है, जिसमें क्रोकोडाइल हंटर स्टीव अर्विन के बेटे रॉबर्ट अर्विन को लोगों को ऑस्ट्रेलिया आमंत्रित करते हुए दिखाया गया. ईसाड में ऑस्ट्रेलिया के आइकॉनिक प्लेसेस, वाइल्ड लाइफ, नेचुरल ब्यूटी, कल्चर और अनोखे अनुभवों को दर्शाया गया। अगर आपने ये एड नहीं देखी है ना, तो अभी जाके गूगल कीजिए और ये एड देखिए। अच्छा, अब हम आपसे पूछ रहे हैं, अगर आपको मौका मिले टूरिज्म ऑस्ट्रेलिया की एड बनाने का, जहां आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया बुला रहे हो, तो उसमें आप क्या दिखाएंगे या क्या बताएंगे, कैसे बेचेंगे ऑस्ट्रेलिया को एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन? नंबर है 04397997667। जब तक आप करते हैं मुझे और मैसेजेस, हम चलते हैं गानों की दुनिया में। हमें एक और मैसेज आ गया है हेमलता पुरोहित जी का, वो लिखती हैं, नमस्ते इति जी एंड योर टीम, वेरी नाइस प्रोग्राम एंड अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, थैंक यू। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या करे, ये तो मेरा दिल कह रहा है आप सबके मैसेजेस पढ़ के। एक और मैसेज आया है हर्षवर्धन सिंह जी का सिडनी से, वो लिखते हैं, हेलो SPS, प्लेजर इज ऑलवेज लिस्निंग टू यू एंड ऑलवेज अमेज्ड बाय द ब्रॉडकास्ट, ह्यूज थैंक्स टू यू फॉर योर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन फॉर ब्रिंगिंग द बेस्ट टू द कम्युनिटी। इतना प्यारा मैसेज भेजा है हर्ष जी, मजा आ गया। हार्दिक जी का मैसेज आ गया है मेलबर्न से, वो लिखते हैं, Hi SPS, I always listen to you. I will make the travel simple for the one who comes here. Would highlight the most visited places with a small video with special places. So, Hardik ji, aapki most visited place kaun si hai? Main ye bhi janna chahungi. Agar meri diary kholi jaye na, to Melbourne ke sare cafes aur sare brunch spots, kya coffee milti hai yahan pe aur kya amazing breakfast milta hai. ये इसकी एक मैं वीडियो बना के सबको भेजूंगी, सबको। हार्दिक जी ने जवाब भेज दिया है, उन्होंने लिखा है, माय फेवरेट प्लेस इज AU79 कैफे इन रिचमंड, बेस्ट प्राणा चाय दे मेक। तो अब ये मेरी लिस्ट में ऐड हो गया हार्दिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक कैफे मैं भी बताना चाहूंगी जहां मैं बहुत रेगुलरली जाती हूं, उनकी कॉफी तो होती ही अच्छी है, पर खाने में जो जायका है, जो वो हर्ब्स और स्पाइसेस डालते हैं, दैट इज जस्ट बियॉन्ड अमेजिंग। उस जगह का नाम है मिडिल साउथ ईस्ट साउथ यारा में, बहुत प्यारी जगह है वो भी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का शो पसंद आया होगा, और जानकारी के लिए आप SPS हिंदी के फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी जा सकते हैं। ऐसे ही अपना साथ बनाए रखें, जल्द मिलेंगे नई खबरें और नई बातों के साथ, तब तक के लिए रखें अपना ध्यान, धन्यवाद।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.